कोई भी बात नहीं। उन भाइयों ने भोग लगाया और हमारे जाकर सबको खिलाया पिलाया, बस दोनों गुरु जी का प्रसाद ले गए। उसने कहा पनिये के पास में, कामिन पनिये के पास में, और लेकर के वो भीतर में चली गई उस पनिये के पास में। बनिया उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा था। वो कहा जी अरे तुम खिजी नहीं क्यों, हमारे ऊपर में वर्षा का पानी नहीं आया, खिजी क्यों नहीं? तो नहीं हमारे पति देव, तुम्हारे पति देव है। अच्छा तो पहले ये थोड़ा सा प्रसाद तो लो। रामानंद जी ने का प्रसाद उसने उनको और पाते ही कह रहे क्यों क्या जादू हुआ, उसका चित्त बदल गया और वो शिष्टी के चरणों में गिर गया, ये तुम उसको क्षमा करो। रामानंद आचार्य बहुत ही एक महापुरुष और तुम महापुरुषा नहीं हो, हमने तुम्हारे प्रति ये जो भावना रखी थी आज मेरी भावना सब दूर हो गई और तुमको मैं देवी के रूप में देखा, उनके चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा और पति करके आवाज एकदम सब दृश्य बदल गया और इसी रात में रामानंद आचार्य के पास में आया। रामानंद ने कहा मैं सब जानता, मैं जान करके ही आया। तो गुरु आया से और शिष्य भी कैसा होना चाहिए। और दो दिन के बाद में कुरेश घूमता हुआ अंधा अपने साथियों के साथ में उसी गांव में आया, सुना कि इसी गांव में रामानंद आचार्य है और ये ऐसी बदलने की बनिए की कामी बनिए का हृदय बदलने का भी सुना उन्होंने। उस स्थान पर आया, हजारों लोग वहां पर थे, पुरुष आकर के रामानंद जी का दर्शन करना चाहते हैं, आंख तो थी और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। रामानंद जी ने कहा मंगल हाथ से पर रखा दोनों आंखें उसकी एकदम नहीं निकला और रामानंद को देख करके वो रोने लगे, उनके चरणों में लिपट गए। गुरु जी ने भी क्या किया, अपने मन में बांध करके उनको कहा तुम्हारा कल्याण हो और तुमको कृष्ण भक्त नारायण की भक्ति। ऐसे रामानंद जी आज उनके शिष्य भी कुरेश, यदि भजन करना है तो कुरेश बनो, बिना कुरेश बने हुए नहीं हो। और भजन करना है तो देखो कैसे उस भी प्राणी अपने शरीर की भी परवाह नहीं, ऐसा शरीर एक दिन जाएगा ही, ये शरीर हम नहीं है इसको भी समझो, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। यदि द्रौपदी की रक्षा कर सकते हैं, इसकी रक्षा कर सकते हैं तो हमारी भी रक्षा, ये सब नौबत ही नहीं आएगी, इस चीज को समझो। भगवान का भजन से बढ़कर के कुछ नहीं, ऐसा समझो। कोटि कोटि अस्पताल बनाना, कोटि कोटि सामाजिक क्रियाएं करना, कोटि कोटि स्कूल करना, उसे एक यदि एक आदमी के चित्त को बदल करके भगवान की सेवा में लगा दो, वो भगवान का भजन हो जाएगा तो उसका ऐसा कल्याण होगा जो और नहीं हो सकता, इस चीज को समझो। भगवान का एक नाम कोटि कोटि सत्कर्मों से अनंत कोटि बड़ा है, इस चीज को समझना चाहिए। भगवान का नाम भगवान के पास में पहुंचा देगा हमारे कोटि कोटि सत्कर्म कुछ नहीं कर सकते, नाम स्वयं भगवान है, इस चीज को समझो। इस चीज को समझने के लिए गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण, जैसे तैसे गुरु नहीं वो प्रतिष्ठित हो तब तक होगा। इन सब चीजों पर करके आप लोग विचार करके शुद्ध रूप में तो भक्त बने, शुद्ध सेवक बने, और नहीं तो भजन होना सहज नहीं है। लाखों कोटि सभी मांग कोटि में से कोई एक है। समय हो गया है अब हम उठेंगे, किंतु तुम भी लोगों को यू कैन बी कलेक्टेड एनीवेयर एंड ही विल एक्सप्लेन। I should explain, but you don't want to explain. और अंत
अंतिम समय कैसा रहा उसके संबंध में थोड़ा सा बदला करके अपने इस विषय में शिक्षा मरे अपने गुरुदेव
जमुनाचार्य
इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा तो बांधी, बताइए उनकी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं वेदांत का भाष्य सिद्ध भाष्य करूंगा। इसलिए लोग समझते हैं कि जगत का सृजन करने वाला जो ब्रह्म है वो निराकार है, उसको कोई गुण नहीं। जब कभी जन्म लेना होता है तो ये शरीर धारण कर लेता है, फिर शरीर को छोड़ करके चला जाता है। किंतु शास्त्रों का ये तात्पर्य इसलिए रामानुज जी सब शिष्यों के पास में कुछ कुछ दिन रह करके सब सीख करके काश्मीर में गए। वहां पर देवी का पीठ है, शारदा देवी का पीठ है। ये शारदा की कौन है?
सरस्वती देवी
भगवान की
शक्ति,
वाक शक्ति। जितने देवता देवी हैं सब भगवान के दास दासी हैं, तो शारदा देवी एक मुख्य है। वहां पर बहुत से वैष्णव लोग थे प्राचीन का, और उसमें एक बुधाएं और टंक और बुधाएं जीवों के लिए सहज रूप में भक्ति है, अनकंडीशनल सरेंडर करते गुरु के चरण में, भगवान के चरण में सहज रूप में उनको पुकारे, उनकी प्रार्थना के लिए प्रार्थना करें कि इसी का नाम है। इसलिए वहां से बुधाएं बहुत प्राचीन कब थे, व्यास देव से भी शायद पहले रहते थे, नारद जी व्यास जी से पहले थे, और भी ऋषि जो थे ये नारद जी से पहले व्यास जी से पहले
पराशर
पराशर वृत्ति वहां पर और उसको उन्होंने पढ़ा, बड़े प्रभावित ताकि हमारे सिख भाष्य क्या यही होगा अपना दर्शन उन ग्रंथों को संग्रह करके अपनी वृत्ति को लिखने के लिए वेदांत का भाष्य लिखने के लिए वहां से जब आ रहे थे तो वहां के सब जितने थे इतने बड़े मायावादी इत्यादि सब वहां
उधर का सब भक्ति परक था,
उसको पकड़ लिया रामानुज को और ग्रंथों को छीन लिया। इन ग्रंथों को हम देने ले रहे नहीं, जब लेकर के चले गए तो भाई ये दुखी हुए, उन्होंने वही नहीं
सारे दक्षिण भारत में उत्तर भारत में सर्वत्र उन्होंने वो गुरु जी के छोड़कर के रह नहीं सकता था, सबसे उनके साथ रहा। वेंकटाचल का नाम सुना है दक्षिण भारत में, विश्व का सबसे संगठित जिसके ग्रोथ में लाखों रुपये रोक पड़ते हैं, सुने जमानत ये सब तुम्हारे द्वारा वहां पर प्रचार भक्ति का प्रचार और सब लोग भक्ति करेंगे, आपके दिन में जीवित नहीं रह सकते। ऐसा ही बात हमारी उसमें प्रवेश करते हैं, और तब जब तुम पाएगा तो हम बोलेंगे चाहिए हम तुम्हारा उत्तर देंगे, और तुम ऐसा समझेगा कि हम मूर्ति बनाई गई। और मूर्ति बनाने के बाद में उन्होंने स्पर्श किया, और वो जो भक्त था परीक्षा के लिए बोला कि ऐसा अच्छा हम परीक्षा करेंगे, वो बातचीत करने लगा, तो बड़ा प्रश्न हुआ उस मूर्ति को लेकर के, पता मूर्ति को वहां पर बदलाया, उनसे आदेश लेकर के जो कुछ करता धीरे धीरे वहीं पर रामानंद आए और वेंकटाचल की मूर्ति स्थापित हुई और विश्व में उसकी प्रतिष्ठा हुई। ऐसे रामानंद थे गुरु, भगवान का प्रतिनिधि प्रकाश होता है, उनकी कृपा की मूर्ति सब एकत्र होकर दुर्भाग्य लोग हैं जो गुरु के ऊपर में शुद्ध गुरु के ऊपर मध्यम अधिकारी नहीं जाते, शुद्ध भक्त हो कभी गुरु तो हो ही सकता है उनसे अधिक है, किंतु यदि अनुभव संपन्न मध्यम का उत्तम या उत्तम का यदि कनिष्ठ और मध्यम और उत्तम बहुत ही नहीं होने पर कभी मध्यमों का भी संग करने से भक्ति हो, तो अपने बचनों से अपने आचरण से उसको शिक्षा देकर के और उत्तम भक्ति होगा। महाप्रभु को देखा, महाप्रभु जी को देखकर के आंखों में आंसू आने लगे और प्रेम में बदल गए। नारद जी ने कहा एक दया को देखो उनको भक्ति हो जाएगा, मध्यम अधिकारी में ये नहीं हुआ, बहुत दिनों के अपने संग से उसके चरित्र को सुधार करके लाएगा, बहुत ही कृपालु होता है। और उत्तम भक्त वाले क्या होते हैं, कुछ निरपेक्ष होते हैं, आप दुखी है सुखी है अधिक उत्तम भक्त वो तो अपने इष्ट देव सक्षम तन में रहता है, मध्यम अधिकारी कुछ नीचे रहता है इसलिए उनके दुख को खुश होता है, इसलिए मध्यम अधिकारी जितने कृपा करेगा उतना वो नहीं करेंगे, ये मन रखे देख सकते हम लोग समझ नहीं पाते दुर्भाग्य गुरु की कृपा को हम लोग उनका शासन नहीं कृपा है ऐसा, इस तरह से चलने से ये हमारे आचार्यों का ऐसा और उससे सारे उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को पालन करने से हम लोग आत्मनिर्भरता कर सकते हैं, भगवत की सेवा में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत से लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं, हम समझते कि प्राय सभी अधिकांश लोग अपना भविष्य जानना चाहते, बात ठीक है, ये क्यूरियोसिटी रहती है सब लोगों को। जब महाभारत युद्ध हुआ उसके पहले व्यास जी ने तो महाभारत लिखा है, तो उस समय तो थे और धृतराष्ट्र के पास में पांडवों के पास में भविष्य उन्होंने पूछा कि क्या खराब, आप तो बदला सकते हैं, आप तो भगवान के अवतार हैं, अच्छा हम यही बदलाएंगे, इससे अधिक नहीं बदलाएंगे, अच्छा इनको छोड़ दो, नारद जी उस समय थे कि नहीं,
थे
ना कि सब कुछ जानते थे कि नहीं प्रभु से, और नाने से भी विश्वास नहीं, और कि उधर तुम ऐसा हो जाएगा वो मस्तिष्क खराब होकर काफी पाप हो जाएगा। अच्छा कृष्ण से भविष्य की कौन जानता है, जिनको कोटि कोटि वर्षों की बात याद है और जिनको याद नहीं है उन्हें गीता में उन्होंने बताया, कितने करोड़ वर्ष की बात मुझे याद है, मैं भगवान हूं ना, मुझको सब पता है और मैं ही तो सब करता हूं, ये भविष्य नहीं हमारे हाथ में। पांडव कौरवों को समझाया माने भविष्य बनता है, यमुना का बहुत बुरा अवसर बना और कुछ अधिक नहीं। अभी का जो शरीर है ये भूत का दर्पण है और भविष्य का भी दर्पण है, माने क्या ये शरीर मिला है किसके, जैसा किया उसी का फल, तो उसके संत लोग यहाँ देख लेंगे, हाथ देख लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। दो पेड़ थे और कृष्ण ने देखा ये पेड़ नहीं कौन है, ये जता है श्राप भ्रष्ट होकर के ये पेड़, कोई स्वर्ग हो गया और ब्रह्मा जी ने क्या देखा, ये इंद्र है स्वर्ग नहीं, और बदलाने पर भी नहीं मान रहा। ऐसे भी यदि भूतकाल के बातों को महात्मा लोग जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, कृष्ण भी जानते हैं, किंतु बदलाने से हम पागल हो जाएंगे एक दिन में। अभी जो जीवन में कुछ सुखी है और जो चल रहे हैं ये तो जरूरी है, इस जीवन में सुख नहीं, हमने भूतकाल में ऐसा कुछ किया ही नहीं जैसे सुखी है, कुछ सुखी किया किसलिए, काम किया, कुछ अर्थ मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सुंदरी स्त्री मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, ये सब के हमने किया तो वो, किंतु नित्य इटर्नल हैप्पीनेस के सुख के लिए ये नहीं, कुछ किया सुकृति थी इसे कभी कभी धाम में आने का संत महापुरुषों के संग मिल जाते हैं, उसका एक क्लू मिल जाता है कि भविष्य में वो सुखी हो सकते, इसलिए भविष्य पर आप लोग चिंता मत करें, भविष्य कभी ब्लड फिर एक मिनट में भी किया जा सकता है। वो कर्म की रेख के भी किया दिया कैसे, भगवान के नाम से होता है। एक ऐसा ही लड़का था जो जन्म होने के कुछ दिनों के बाद वो मर जाएगा, मार्कंडेय ऋषि, हुआ क्या वो की आयु कितनी हो गई, रक्तालु के रेख में लाखों लोगों की कर्म को बेटा जा सकता है भगवान के नाम, ऐसे नहीं होगा, अपने कर्मों का फल जरूर चखना पड़ेगा, जो जस किया जो असफल चाहता वो जरूर चखना पड़ेगा, किंतु भगवान आनंद करने से भजन करने से सब कुछ हम प्राप्त दे सकते हैं, आयु को भी बढ़ा सकते हैं, ये भगवान के नाम में सकते हैं, इसलिए सुखी होने के लिए भविष्य के लिए अधिक चिंता न करते, जो है सब तो है, भगवान का नाम करें, भजन करें और उस कर्म के रैंक को भी एकदम मिला दें और जीवन में सुखी हो जाए भविष्य के लिए, इसलिए शास्त्रों में ऐसा ही होता है। भजन प्रिय लोगों के लिए जो घर छोड़ करके आए हैं, those who have left their wealth, reputation and everything, and they have come to जो मनोकार्य गुरु जगदानंद पंडित जी, उनके लिए था कि वे ट्रांसलेट आपका पढ़ पाठ आए तो, और हिंदी में कुछ बोलते हैं, I want to speak in Hindi that after that he will come. Mahaprabhu Jagdanand is karen. Bairagi bhai, hum sab bairagi bhai hain. Jo ghar chhod kar ke hain. Sab bairagi bhai hain. Sab ke liye karen. Bairagi bhai, gram mein pata na sun mein kaane. Gram mein pata na koi bhi, jab hi mil gaya. Jab Vishnu ke saath mein mila, तो ये मत पूछो आप ठीक हैं, कुशल हैं, आपके बच्चे बेटी ठीक सब ठीक हैं, घर में ठीक हैं, ठीक कहाँ रहेगा? संसार में कोई ठीक नहीं है। धनी शराबा अटल जी से पूछो कि आप कुशल से हैं, अभी क्लिंटन आए थे उनसे पूछो कि आपको कुशल है ना, कोई सुखी नहीं। In this world, no one is happy. Happy will be in only Golok Vrindavan, not here in this world. कभी कभी हुई नहीं शक्ति। तो क्या करना चाहिए? सनातन प्रभु महाप्रभु जी से मिले तो उन्होंने क्या कहा?
हमें
क्या मिले? क्या हम जा रहे था पता? नहीं जानी करने। मैं क्यों ये जगत में सुखी नहीं? मैं कैसे सुखी हो सकता? ये सब हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मिलते थे तो क्या बातचीत होती थी? रात भर बातचीत होती रहती। राय रामानंद और स्वरूप दामोदर महाप्रभु जी से मिलते तो महीने के महीने क्या बातें होती? माता की कोई बात होती, ग्राम में कथा होती क्या? बहुत चर्चा। इसलिए हम लोग भी ये बहुत चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए इतने प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। ऑल दी प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू ग्राम में कथा। We are not engaging our mind and heart activities in Krishna. हम लोग नहीं लगाते, इसलिए सोचते हैं कि वो हमारे संबंध में ये सोचता है मैं बदमाश हूँ, मैं चोर हूँ। उसी के चक्कर उसका चित्त विचलित है। दूसरे कुछ नहीं कहेंगे, दूसरे ने कुछ नहीं हंस दिया, ओ यहाँ तो चोर समझ रहा, मैं बदमाश हूँ, क्योंकि मन अच्छा उसका था। दूसरे को कोई कोई
मैंने
ये मनुष्य आरोप लगे हमारा ये बर्बाद। संसार में जब कृष्ण थे पांडव थे अधिकांश लोग तो उनकी निंदा करते, अरे रामचंद्र जी जैसे भले आदमी सब प्रकार से सबकी सुख सुविधा चाहने वाले, और उनको भी धोबी से लेकर के कितने लोग उनके दुख झलक थे। इसलिए ये मत सोचो कि ये हमारे पीछे लगे हुए हैं, इसलिए हमारा भजन हो रहा नहीं हो रहा है, और हमारा भजन गड़बड़, हमारा चिंता शांत है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा ये पैदा कर रहा है। इस चीज को समझो। उसने हंस दिया और क्या रूप को सामने बोलते हाँ बोलते और हंस दिया कौन? हाँ जी कृष्ण दास ने
हाँ नहीं नहीं
रूप को सामने हंसा था। ओ हमको देख करके मैं मैं चिढ़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, लंगड़ा हूँ, ढूंढा हूँ, और इसलिए हमको देखकर कि उसने हंस दिया। और वो किसके हंसे? वो भजन में समाधि में। और कृष्ण और कोई ऐसी चर्चा हो रही थी कृष्ण के साथ में, और उसको देखकर के हंसा, नित्य लीला में प्रवेश करके उनकी कृष्ण की लीलाओं को देखकर के हंसे। और इन्होंने सोचा जो हमको चिढ़ा रहा है, ऐसे ही संसार में अधिकांश है। कुछ लोग तो ऐसा कुछ मैसे, किंतु अधिकांश जो भक्त लोग होता है क्या काम होता है? तो इसलिए ये मत सोचो कभी कि हम जो हमारा चित्त खराब हो रहा है ये कर रहा है, कोई भी किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसे अपने करने का अपना ही, इसलिए हम अपने आप प्रिय कर रहे हैं ये और कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता। ये इस बात को ठीक रखो, इसलिए हमारा कोई भी शत्रु नहीं, वो सुख रहेगा। किसी में कुछ शक्ति है करने का जो हमारा बिगाड़ दे? विश्व में एक एनिमल ये टैक्बुक एंड डिसार्मी वो कैन किल मी वो कैन डू एनीथिंग इसलिए हमारा जो कुछ मन है हमारा है यही हम ही सब। इसलिए शांत होकर के भजन करो। जगत में जहां जाओगे इससे लाखों प्रॉब्लम के लाखों कोड़ी तो यहाँ तो कुछ वैष्णव लोग आदर भी कर रहे हैं, स्नेह भी कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। जगत में कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा ये सुन। इसलिए शांत चित्त से भजन करो। ग्राम में कथा ना सुने, ये मन होता है खराब ग्राम में मैंने दूसरी बातों को सुनने से स्थूल बुद्धि होनी चाहिए। हम आत्मा है, इसे समझो। इसलिए ये घर जल गया तो हमारा क्या हुआ? ये घर जल गया तो हमारा कुछ जला? हम लेकर के आए थे कुछ? क्या जला? हमारा घर जल गया है, क्या जल गया? पांडवों का तो जल गया, सब कुछ ले लिया उन्होंने, कभी दुखी रहे थी और ही दुखी रहे। Try to give all kinds of doubt to him. Always chanting, chanting in the middle. Then you may. Other questions? Anyone can? जब किसी से मिलो तो ग्राम में बात मत करो और दूसरे से मत सुनो। भाई वो तुम्हारे तुम्हें ऐसे ही सोचता है, ये कहेंगे। दूसरी बात, बहुत अच्छा इन्होंने बताया, किसी का मन रखने मत जाओ। मन रखना मैंने क्या, किसी को प्रसन्न करने जाओगे तो दूसरी की चापलूसी या दूसरों की चर्चा करनी पड़ेगी, वो बहुत बुरा। किसी का मन मत रखने जाओ, मन रखो गुरु जी का, भगवान का, फरदा किसी का मन रखो जाओगे और कर्म मार्ग में फंस जाओगे। स्वप्ने में ना कार्य करो स्त्री संभाग, स्वप्न में भी स्त्री या पुरुष पर पुरुष और पुरुष पर स्त्री के साथ संभाषण, हंसना बोलना एकांत में। यदि हो तो उनको माता बहन और कन्या, और तब स्त्रियां भी पुरुष को अपना पिता भाई और बेटा, बस यही संबंध रखे। एकांत में अपनी माँ से भी बातचीत ना करें, अपनी बहन से भी, और बहन भी एकांत में अपने भाई और पिता से भी। ये काल कलयुग है, बहुत से देखते हैं पिता और माता का, पिता बहन का भी संबंध, पिता बेटी का संबंध भी आजकल कलुषित हो रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी से यदि भजन करने की इच्छा है, इसलिए महात्माओं के वचन पर कभी भी कोई बात ग्रह्य बात। और गुरु जी यदि कोई संसारिक बात नहीं करते हैं तो उसको सुनो और समझो कि वो किस लिए कर रहे हैं। गुरु जी कहते थे यदि हम विषय की भी बात करते हैं तो सुनो, हम उसको किस लिए प्रसंग को छेड़ करके परमात्मा लाने के लिए उन लोग नहीं समझते। गृह स्त्री भाई चाहिए आज हसी आज अरे भाई स्वप्न में भी ऐसा मत करो। इवन इन ड्रीम जिस लुक एट लॉ एंड जॉब जॉब विद लेडीज ऑलवेज थिंक with proper respect to them, like mother, sister, and so on. And ladies also, they should respect, like father, brother, and son. This is reason. But nowadays, it is very hard. Anyone doing bhajan, but still they want to marry, again and again. After 2 days, the lady becomes old, or the person becomes old, and again and again, new, new. New ground there, but this is back there. यदि चाहे पुराने राहिते गोरंग निर्शने छोटे हरे दाशे सदा। यदि आप गोरंग जी से, कृष्ण चंद्र जी से, श्रीमती राधिका जी से, यदि प्रणय रखना चाहते, अरे प्रणय की तो बात छोड़ दो, अभी श्रद्धा ही रखो तो। प्रणय तो बहुत प्रणाम तो यदि उसे रखो, रखना चाहो तो याद रखो क्या छोटे हरिदास है, छोटे हरिदास की बात ना। ये विमान टूला कृष्ण, ये विमान टूला चैतन्य महाप्रभु। ऑलवेज रिमेंबर द पास्ट टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु अकॉर्डिंग टू एवरी टू हरिदास ऑलवेज। एंड इफ यू विल गो अवे you have to pay something for this. Bhavuna khai de yaar bhavuna. Achha mat khao, achha mat pano. Jo bhi raya khatu ki ta prasad ye chik mil raya. Nahi bata hai toh jo kuch siddh boy le ye sab karo. Jeev ki rashna ke liye matlab. Bhavuna khai de yaar bhavuna. Jo te din raat usi ka charcha mein laga rehna padega. अच्छा भी पाना नहीं सर आठ ढूंढते रहो। एक समय में याद है कि हमारे गुरु भाई थे बाबू महाराज जी के छोटे भैया निमाई अभी वो है कि नहीं है मैं नहीं कर तो पंडित थे
बहुत पंडित
बहुत विद्वान आदमी संस्कृत के
माता
पढ़ते 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 उनका माथा ही खराब हो गया संस्कृत वो सब हो गए प्रसन्न के बाद
पंडित है वो कल जिनका पुंडरीक विद्या निधि है
महाप्रभु के साथ में सब समय लीला में उपस्थित रहते हैं और किसी न किसी प्रकार से सेवा करते हैं, उनके साथ में रहते हैं महाप्रभु जी के साथ में। किंतु भद्राचार्य का और उस ब्राह्मण लड़के का महाप्रभु जी के बस ये जो आए ब्रज में और फिर लौटे, इसके बाद में कोई रोल नहीं देखा। यद्यपि वो पूर्व जाने की वो क्या सती वो सती है, ठीक है, किंतु उनके साथ में महाप्रभु जी गए आए और सब ठीक है, किंतु इसका बात का कोई भी रोल कुछ भी हम नहीं देखते हैं। जैसे रूप गोस्वामी का सब समय देखते हैं, सनातन गोस्वामी जी का देखते हैं, जगदानंद पंडित का देखते हैं, बकरेश्वर पंडित का भी देखते हैं, सबका देखते हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से रूप गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का और बकरेश्वर पंडित का, हरिदास ठाकुर का, अच्युतानंद का महाप्रभु के कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, भाव अभिष्ट होकर के गिर रहे हैं, अष्ट सात्विक भाव ये सब दिखाई पड़ता है, इनके लीला में हमने देखा। स्वामी के रूप में बस जाते हैं, वो आते हैं पूरी पूरी से और फिर लौट जाते हैं, इसके बाद उनका नाम करते हैं।
ऐसी काला कृष्णदास का होगा,
काला का दास भी कुछ होगा,
ऐसी नित्य होगा,
तो इसलिए हम लोग उसका आदर्श करते हैं। आदर्श ग्रहण करेंगे किसका, जैसे रूप सनातन इत्यादि महाप्रभु जी के परिकल्पना करते हैं, जो प्रेम से उनकी सेवा करते हैं, महाप्रभु जी के रूप गोस्वामी का अनुगत होकर के जो रहते हैं। किसी का विचार ले सकते हैं किंतु आचार नहीं ले सकते, किंतु जिनका आचार और विचार दोनों भक्ति का अनुकूल है बस। और रामानुज का भी I want to tell you that we are here in Vaishnavas, everything we have done. From part 2, about 108, teachings of Srila Ramanuja. And we have published in our Patrika, Gaudiya Patrika, Bhagavata Patrika, and we follow also. रामानंद के जीवन के चरित्र का हम लोग फॉलो करते हैं, यू नो पुरुषोत्तम प्रभु, यू नो लाइक दिस वी आर रामानंद समथिंग नथिंग हियर इज नॉट अ वेरी सिंपल फैमिली बिकॉज मैरिड एंड ही रामानुज साधारण फैमिली में जन्म लिए, माता पिता धनी को मानी नहीं और मायावादी एक सन्यासी से उन्होंने शिक्षा ली, सब व्याकरण से लेकर के शास्त्रों का, और वो देखा अंत में एक दिन रामानुज ने उसके विचारों का खंडन किया। एक दिन वो पढ़ा रहा था मायावाद तत्व तो रामानुज की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने उपनिषद के या वेद के किसी एक भाग में तप्त्यांश लिखा था जिसकी पुंडरीक के समान आंखें होती है भगवान की, उसका मन है भगवान के लिए प्रणाम करते हैं पुंडरीक ने, उसने बंदरी का अर्थ बंदर का जैसा धूम पीछे होता है ऐसा भगवान का लाल आंख है, भगवान के बंदरों के पीछे लाल होता है, तो उसे उपमान देवी भगवान के साथ। रामानुज की आंखों में आंसू आ गया जिसे भगवान के कमल नयन की आंख की उपमान और ये बंदर के पिछाड़ी का से देवी जलम जल पीता है इसलिए कप्य, और इसके बाद में कौन पीता है? सूर्य। और वो जिसको
पद्म प्रकाशक
उसको प्रकाश करता है किसको?
कमल
को। उस कमल के समान जिनके नेत्र है कमल के, ये सुनकर के वो आश्चर्य कोई उत्तर नहीं दे सका और शास्त्रों से उसका प्रमाण दे दिया
ज्यादा प्रकाश से।
तो उसने सोचा जैसे ये छोटे बचपन की स्थिति में इतना बड़ा धुरंधर और शास्त्रों का अर्थ करता है तो मायावाद को उड़ा देगा, ये खत्म कर देगा। एको महाअश्मी या मैं परब्रह्म सर्वम कलंकम ब्रह्म इत्यादि ये सब को उड़ा देगा, इसलिए इसको मार डालना चाहिए। इसलिए अपने सब अपने और शिष्यों को साथ लेकर के कहा कि चलो हम लोग जाएंगे टूर में चलेंगे। उस समय हम उनको ले लिया और लेकर के जब जाने लगा तो अपने शिष्यों में से जितने थी उनको कहा कि इसको मार डालना। जंगल के बीच में जब आने को बाद तब तक उन्हीं के शिष्यों में से एक इसका अपना भाई था, मेरा भाई उसका नाम था
गोविंद,
गोविंद
भाई का नाम था लक्ष्मण देसी।
उन्होंने ऐसे पढ़ सकते हो बोलो, हम तो तरह खुश आदमी है बोलो, जल्दी बोलो, हम सुन गए बोलो जल्दी बोलो। ज्यादा प्रकाश अपने शिष्य को बोला इनको जैसे जैसे मार डालना है, तो उन्होंने बताया हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। जंगल रास्ते जा रहे थे तो गोविंद जी उनके भाई थे तो बता दिया देखो भैया आज गुरु जी ने सबको बताया कि तुमको मारेगा, एक काम करो तुम ये बहाना बनाओ कि ऐसा गुरु जी लोग समझ सके। ठीक से बताओ जैसे समझे, वैसा बोलता है कि हम ही नहीं समझे, बोलने का तरीका जरा बोले। जब दादा प्रकाश जी अपने शिष्य के साथ षड्यंत्र रचा क्या था ये बताओ, क्या था
ये बता रहे हैं कि जब जंगल में जाने के लिए यादव प्रकाश जी ने कृष्ण के साथ षड्यंत्र रचा कि जंगल में मार देना रामानुजाचार्य जी को, तो आगे बता रहे
गोविंद क्या,
गोविंद जो मेरा पसेरा भाई था उनका उसने सूचना सूचना दे दी षड्यंत्र
किया।
अभी तो इतना ही बताया मैंने।
उसने कहा कि आज रात में आपको मार डाला जाएगा, इसलिए सावधान रहो। जान करके रामानुज वहां से निकल करके भाग गए और जंगलों जंगलों वहां से बहुत दूर हजारों मील वो जंगल पार करके आए थे। उस जंगल के बीच में पहुंचे, भगवान ने किसी प्रकार से अपना रूप धारण करके उनको आराधना करते थे। कौन था गुरु? को बरतराज एक साधारण वेश बना करके आदमी जैसा और रात में उनको लालटेन ले करके और एक मिनट में वो हजारों मील का रास्ता पार करके सवेरे और गांव के समीप में उनको पहुंचा। तब जब सवेरा हुआ तो देखा अरे हम तो यहाँ पर आ गए अपने घर और उधर में वो आज शिकार निकल गया यहाँ से। कुछ दिनों के बाद में घूमते घूमते लौट आया, फिर भी रामानुज ने उसके प्रति कोई भी संदेह नहीं किया। फिर उसके स्कूल में
बताया कि मेरे डाकी करने के लौटे ही नहीं, तो सोचा जब बाघ फंस गया तो मैं मार दिया अच्छा ही
तो। अब इतना तो समझ। इसके बाद में उस देश का जबकि वो बड़े हो गए तो स्कूल में पढ़ते रहे और इसके अंदर में ईर्ष्या टिकी रही। फिर कुछ दिनों के बाद में उसे परास्त करके और उसको अपना शिष्य बनाया यादव प्रकाश को और फिर ने संन्यास प्रवर्तन किया। कैसे ये सब उनके जीवन से उनकी स्त्री बड़ी बाचाल थी, बहुत बाचाल थी, सब समय लड़ती झगड़ती रहती। रामानुजाचार्य के कोई शिष्य थे उनका नाम मुझे नहीं आता, नीच जाति के थे किंतु बड़े उत्तम भक्त थे। वो उनके पास में आए, रामानुज ने यमुनाचार्य ने उनको भेजा था ये रामानंद के पास में जाकर के उसको शिक्षा देता, इसलिए वो आए। इन्होंने बड़ा सागर किया और अपना शिक्षा गुरु बना लिया, कांचीपुर उनको बना लिया। और वो अपनी पत्नी के साथ में आए थे, उनको रहने के लिए उत्तम सारी व्यवस्था कर दी। एक दिन वो पानी भर रही थी और इतने में कांचीपुर की स्त्री एक कुएं में, और इधर रामानुज की स्त्री आई पानी भरने के लिए, तो पानी इसका छलक करके रामानुज की स्त्री के घड़े में कुछ आ गया। बस वो बड़ी बिगड़ गई और उसको डांटा, गाली गलौज करके उसको वहां से निकाल दिया या अपमान किया। कांचीपुर को जब ये पता लगा तो रामानुज उससे कहे बिना लौट गए श्री रंगम में गुरु के पास। रामानुज ने देखा कि ये तो बड़ी हमारी भक्ति की बाधक है, ये तो वैष्णव अपराध किया और हमको भी वैष्णव अपराध देना है। इसलिए रामानुज आचार्य ने उससे कुछ अनबन हुई अपनी स्त्री से होने पर भी उन्होंने एक दिन पाठशाला में वो पढ़ा रहे थे, कोई गरीब आदमी आया तो उसने रामानुज से कुछ भोजन मांगा। उन्होंने कहा दे जाओ हमारी पत्नी के पास में भोजन मिल जाएगा। तो जब ब्याह मांगने के लिए तो उसको दूध का चक्कर नहीं दिया, रामानुज के कहने पर भी नहीं दिया। दूसरों उन्होंने एक उपाय सृजन किया, जब इस घर में नहीं रहना है अब तो हमको अपने गुरु के पास में श्रीरंगम में जाना है और इसका कुशल में छोड़ना है, इसलिए स्कूल में पढ़ाते समय ही में एक आदमी को पत्र दिया, तुम ये पत्र हमारी पत्नी को दे देना और उस पत्र को हल्दी रख करके और खास और पान रखा था सूते से पिए सूते से, और उसके साथ में नारियल और जनेऊ भी रख दिया और उसमें लिख दिया ये बेटी हमारा हमारे लड़के की सगाई है शादी है, तुम जल्दी से चला आना, हम ब्राह्मण के द्वारा तुमको ये निमंत्रण भेज रहे हैं और अपने पति को भी साथ में ले। रामानुज ने अपने हाथ से ये सारी चीजें बना करके और उस ब्राह्मण के हाथ से जिसको पहले भोजन नहीं किया था उसको भेज दिया उसके घर। जब वो निमंत्रण पत्र देखा, नारियल देखा, सूता देखा और ये हमारे पिताजी ने पत्र लिखा है, तो उसको घर में लेकर के फिर राबड़ी और माल कुए और सब तरह की चीजें बनाकर तो उसको बड़े आदर के साथ में खिलाया। और पति आए तो बड़े मीठे स्वर से उनसे बोली जैसे पिताजी ने आपको और हमको बुलाया है, हमारे भाई की शादी है, आप भी चलिए। बोले मैं कभी व्यस्त हूँ तो इस ब्राह्मण की शादी में तुम चली जाओ, बस किसी ब्राह्मण के साथ में उसको उसके शहर भेज दिया और अपने आप क्या किया उसे देवघर को ताला दे करके और चले गए। जिस समय गुरु जी के पास में पहुंचे तब तक गुरु जी अप्रकट हो चुके हैं और उनको लोग ले करके जा रहे हैं समाधि देने के लिए, मंदिर से निकल करके कीर्तन करते हुए हजारों शिष्य लोग जा रहे हैं। इतने में रामानुज पहुंचे, कहे भाई ये इसको ले जा रहे हो तो ये तो जमुनाचार्य, अरे मैं तो उनके यहाँ जा रहा था इनका शिष्य बनने के लिए, बहुत दिनों से लाल था और सुना था जैसे उनकी दीक्षा थी इसलिए कांचीपुर को भेजा था, रामानुज को लाना हम उसको दीक्षा देंगे और जगत में हमारे विचारों का प्रचार करेगा, तो ये तो हुआ नहीं। तो उन्होंने लगे और बोले जैसे इनको नवाओ हम इनका दर्शन कर लें तब तक लेते, तो उनको उतारा गया और उन्होंने कहा जरा कपड़े हटा दो, तो कपड़े भी हटा दिया तो देखा कि सब शरीर ठीक है, सूर्य जैसा चमक रहा है किंतु उनके हाथ की ये तीन उंगलियां बंद और एक ऐसे बस तीन उंगली बंद, ये पहले से था या अब हुआ, तो लोगों ने बताया कि पहले तो था नहीं, ये तो नजरे कम हो गया, उन लोगों ने देखा है। तो उन्होंने कुछ समझ करके और हाथ जोड़कर उनके सामने प्रतिज्ञा की ये मैं वेदांत का सूत्र लिख करके वैष्णव जी और उसका प्रचार, इतने में एक अंगुली खुली। तो दादे मैं अभी इसके यहाँ से त्रिदंड संन्यास ले करके और तब आपके मत का प्रचार, और तीसरा वैष्णव सदाचार जो आपके ये संप्रदाय में हम लोग के है, ये सब का मैं अच्छी तरह से विश्व की सारे जगह में विस्तार मैं बात का खंड से हमने इनसे दीक्षा ली, इनसे मंत्र और संन्यास भी ले लिया, उसी समय उन्होंने फिर लिया और इसके बाद में गुरु जी को समाधि दी। यहाँ तक तो साधारण चक्र है, इसके बाद में विशेष चक्र और बनता है। इसे सीखो, ट्राई टू लर्न, ये सब ट्राई टू मैंने आप लोगों को ये चाहिए लेना, ये गुरु जी क्या चाहते हैं, मनोविष्ट क्या है उसको पूर्ण करेंगे, ये शिष्य का कर्तव्य है, अन्य तो वो शिष्य नहीं क्या है, शिष्य का उनका कुछ होता है। विद्वान और बड़े बड़े प्रभावशाली तो सब लोगों ने मिलकर के रामानुजाचार्य को भी श्री रंगम का आचार्य नियुक्त कर दिया, किंतु रामानुज ने क्या किया, जमुनाचार्य के जितने भी शिष्य थे जो जमुनाचार्य के विचारों को मानकर के चलते थे और आचार विचार में प्रवीण थे, एक एक शिष्य के पास में 6 महीना 4 महीना 2 महीना 1 वर्ष रह करके सबकी सेवा की और उनसे गुरु जी के उपदेशों को श्रवण किया। शिष्य क्या का कर्तव्य है, गुरु भाइयों को यथा योग्य सम्मान देकर के उन्होंने गुरु जी से जो कुछ प्राप्त किया था साक्षात रूप में उनकी सेवा की और सेवा करके तब उन उपदेशों को उन्होंने धारण किया, तब 3-4 वर्ष के बाद में सबसे सीख करके तब श्रीरंगन गद्दी पर बैठ करके वैष्णव धर्म का विशिष्टाद्वैत का प्रचार सारे विश्व में, पहले तो दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में सर्वत्र, ऐसे ही नहीं होता, गुरु की सेवा विषम रूप से और गुरु भाइयों की सेवा यदि योग्य है तो उनको भी सेवा और यदि हमारे सामान्य है तो उनको सम्मान देते हुए उनकी सेवा करते हुए और जो कनिष्ठ है उनको उपदेश दे करके उनकी सेवा करते हुए इस प्रकार से है, अन्यथा वो शिष्य नहीं हो सकता है। जब प्रचार करने लगे तो दक्षिण भारत में इनका इतना प्रचार होने लगा कि वहां पर शैव लोग अधिक है, शैव मायावादी, एक है शंकरवादी मायावादी और एक है शैव है वो भी मायावादी, उन लोगों का उधर में बहुत प्रचार था, यहाँ तक कि राजा भी वो शैव था। उन्होंने सुना
दोनों में क्या अंतर है,
ये ब्रह्म को मानते हैं शंकराचार्य और वो शंकर को भी ब्रह्म मानते हैं, वो करीब करीब शैव विशिष्टवाद है,
अपने को
ब्रह्म मानते हैं ये शंकराचार्य वाले, सर्वम खलिदम ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि तत्तमसि, ये शंकराचार्य और इनके 5 रूपों को जो मानते हैं विष्णु शिव प्रचार से उनका प्रचार घटने लगा और सभी जो शैव थे और वैष्णव होने लगे, तो राजा बहुत बिगड़ा और सोचा कि इसको हम यदि मरवा कर डालें तो किसी प्रकार से ये प्रचार बिना मरवाए नहीं होगा, इसकी हत्या करा देगा, इसलिए अपने बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को रामानुज के पास में भेजा कि अब आप पत्र पाते ही कल हमारे उन्हीं के राज्य में रहते थे, रामानुज श्रीरंग उन्हीं के राज्य में था, कल आप हमारे यहाँ पर आइए चोल राज्य में और यहीं पर शस्त्रार्थ होगा और जो हार जाएगा उसको आंख का अवतार निकाल दिया जाएगा, आंख निकाल दिया जाएगा और जो जीत जाएगा वो जीतेगा। रामानुज के यहाँ पर चारों तरफ से सिपाहियों को अपने सैनियों को भेज दिया, चारों से घेर करके जबरदस्ती पकड़वा करके लाए, कुरेश जी समझ गए, उनके भाई भी थे चचेरे भाई या मौसा भाई थे और बड़े विद्वान थे, रामानुज के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि गुरु जी आप हमारे वस्त्र बांध करके सफेद और गृहस्थ का वेश बांध करके आप निकल जाइए हमारे नाम पर, और मैं आपका संन्यास और त्रिदंड और लाल वेश कपड़े का ये धारण करके मैं जाऊंगा और सबको परास्त कर दिया। ऐसा ही हुआ। उन्होंने रामानुज का सब त्रिदंड वेश इत्यादि दे दिया और रामानुज ने अपना कपड़ा दे दिया सब कुछ, और कुरेश ने रामानुज का दंड संन्यास धारण करके वो वहां पर आ और उन सिपाहियों के ये उनको तो निकाल दिया वहां से। रामानुज निकल करके चले गए और उत्तर भारत की तरफ में बढ़े। रात ही रात में बहुत दूर तक चले आए अपने सारे शिष्यों को लेकर। आज ये पुरुष दो चार साथियों को लेकर के इनको लेकर के गया, किंतु ये अभी कुछ बाल माने वो थे प्रौढ़ उम्र के और ये अभी था अभी नौजवान पुरेश, बहुत जोशी का व्यक्ति, सूती धर्म था। एक बार सुन लिया तो उसको याद रहता था, इसलिए रामानुज के जितने जो ग्रंथ तंत्र जो कुछ था सब इसने चिख किया था और पूरा इसको बुखार था। तो जब कि वो लेकर के जो राज्य में गया वहां से और सभा बैठी पड़ी, सब मायावादी सही और लोग बैठे और इसके बीच में कहीं कौन विचार करेगा ये तो छोटा सा बच्चा है, कहे मैं रामानुज होकर के भी छोटा सा नहीं हूँ ऐसा मत समझना, आप लोग कोई भी विचार स्थापन कीजिए मैं इसका खंडन करूंगा। उन्होंने जो कुछ उठापन किया सब जो विचार उसका सब एकदम खंडन मंडन करके एकदम खत्म कर दिया। ये छोटा सा बालक उसके सामने पतिता के सामने कार नहीं चले। अंत में उसने घोषित किया राजा ने कि ये हार गया और ये हमारे पंडित लोग जीत गए जबरदस्ती और इसे इसकी आंख निकाल ली जाए और छोड़ दिया जाए, बस उसकी आंख जीवित अवस्था में निकाल ली गई सुरेश की और उसको छोड़ दिया गया। वो उसे दुखी भगवान कहीं और रामानुज की चिंता करता हुआ किसी प्रकार से अपने आदमी के साथ में किसी प्रकार से वो भी रामानुज की खूब करता हुआ चला जी हमारे गुरु जी का इधर ये तो बहुत दूर ऊपर में चले आए थे उत्तर भारत की तरफ में और ये भी घूमता 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 बाई चांस दो तीन वर्ष के बाद में उस स्थल में पहुंचा जहाँ रामानुज थे। रामानुज कैसे थे? रामानुज अपने 50-60 शिष्यों के सभी एक गांव में गए। उस गांव में उनके दो शिष्य, एक बहुत धनी और एक बहुत गरीब, किंतु दोनों शिष्य रामानुज जब पहुंचे उस गांव में तो किसी बगीचे में गांव के बाहर बैठा करके अपने दो शिष्यों को भेजा, ये जाओ तुम धनी शिष्य के पास में उसे कहना जो तुम्हारे गुरु जी आए हैं उनकी कुछ व्यवस्था कर दे, तुम जा करके और फिर उसको लेकर के आना तब हम उसके घर में जाएंगे और वहीं पर गरीब शिष्य है वहां से उसके पास ले जाएंगे या उसको हम बुलाएंगे। जब वो दोनों शिष्य जब धनी घर के में पहुंचे तो वो इतना आनंदित हो गया कि घर में ही बैठ करके और व्यवस्था करने लगा कि गुरु जी के लिए ये आएगा चीज ये आएगा और वो और शिष्य लोग खड़े रहे उनसे कुछ भी नहीं पूछा, पानी पीने के लिए भी नहीं पूछा, कैसे हैं ये भी नहीं पूछा और गुरु जी की सेवा के लिए वो व्यवस्था में लग गया। ये लोग एक घंटे दो घंटे तक रुके किंतु वो बाहर जब नहीं आया तो वो चले गए और रामानुज से बोले जी शुक्र तो हमसे बात करके मैंने कहा और वो लोग चला गया घर में और घर में जाकर के फिर लौट आए नहीं कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा ये बात करो जब नहीं यहाँ तो गरीब के घर में भी चलो। सब लोग मिलकर के गरीब के घर में पहुंचे 12 बजे। वो जो गरीब जो उनका शिष्य था वो घर में नहीं था, वो भीख मांगने के लिए गया था, ब्राह्मणी घर में थी, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। रामानुज ने कबाड़ पर ठोकर दी, मैं रामानुज आचार्य तुम लोगों का गुरु आया हूँ दरवाजा खोलो। वो आनंद में बड़ी विभोर हो गई किंतु उसके कपड़े ऐसे फटे जो तन ढकने के लिए नहीं, बड़ी लज्जित होकर के भी दरवाजा खोला तो देखा रामानुज ने कि अरे ये तो एक तरह से फटे कपड़े इसके हैं, अपना वो जो चादर था भाई पास ये लेकर तो उसके शरीर पर फटे दिया, उसने ढक करके उनको प्रणाम दिया घर में ले गई और सोचने उनको बैठने के लिए क्या जैसे तैसे उसने चिंता किया कि हमारे पास के घर भी पास में एक बनिया बहुत बड़ा था इस घर में वो बीच बीच में हमारे पास में बहुत बुरे प्रस्ताव रखता है किंतु मैंने उसको सब समय फटकार आज ये काम में आएगा गुरु के सेवा के लिए ये शरीर का कोई मतलब नहीं ये शरीर नश्वर है, इसी शरीर से की हमारी सेवा हो जाए तब इसके लिए तैयार है। वो उसके बनी के पास में गई और बोली, जैसे मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ, आज मैं रात में तुम्हारे पास आऊंगी, तुम हमारे गुरु जी के खाने पीने के लिए और उनके शिष्यों के लिए इतनी चीनी, इतनी आटा, घी, मैदा, उड़ा सब कुछ लेती है, वो सब दे दो। तो वो लेकर के बहुत प्रसन्न होकर के उसको दे दिया और घर में आकर के रसोई बनाया बड़ी खाट के साथ में, भोग लगाया और अमन आचार्य को बैठा करके सब लोगों को 50-60 आदमियों को खिलाया पिलाया और वो विश्राम कर रहे थे वही पेट के नीचे ही, घर घर में विश्राम कर रहे हैं। अब 3-4 बजे के करीब में उसका पति बिना भिक्षा के ऐसे ही लौट करके आया, दरवाजा खुलवाया, इसने खोला, अरे गुरु जी आए हैं, आप प्रसन्न हुआ, अरे तो हमारे घर में बिना बुलाए